नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का सुहाना सफर कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। किसी ने कहा है कि किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है, वो कितना गहरा जाएगा अंदाज लगाना मुश्किल है। हम अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से कर्म की गुह्य गति को समझने का, जानने का और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे वर्तमान में अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या क्या विधियां हैं जिससे इससे बाहर निकला जा सके, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए स्वागत करते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, हम पिछले एपिसोड में चर्चा करते करते लास्ट में आए थे कि हमारा जो वर्तमान है वही भविष्य का निर्माता होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य इतने उलझ जाते हैं अपने इस वर्तमान में और उससे बाहर निकलना बहुत बार मुश्किल होता है। कोई कोई तो अपने समस्याओं से या पाप कर्म का जो प्रभाव है उससे किसी के मार्गदर्शन जब मिल जाता है तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार आदमी जो है इतना मूंझ जाता है कि वो गलत काम भी कर लेते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं। कैसे निकले वर्तमान से?
पाप का प्रभाव या कर्म की गति जो हमारे साथ हो रही है उससे बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समस्या कहाँ है? वर्तमान में है तो समस्या है ही नहीं। हम कोई तो लोग पास्ट में है और कोई फ्यूचर में, कोई आगे का सोच रहा है और पिछला ढो रहे, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में है तो बहुत अच्छा है,
लेकिन मेरे सामने तो सारी समस्याएं वर्तमान में दिख रहा है।
हाँ, लेकिन वर्तमान की समस्या को समझना है तो सबसे पहले वर्तमान में जीना पड़ेगा। अभी तो आ गया ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे समझो गलती से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे माता पिता है वो हमारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन हो गया ना, अब आगे कैसे जाएंगे? तो इस बात को, ये पिछला हो गया, पास्ट को भूलना पड़ेगा
जी,
पास्ट को रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज है स्वीकार करना पड़ेगा। देखो जैसे ये कपड़ा है, ये गंदा हुआ है, लेकिन अगर मुझे स्वीकार नहीं है तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे स्वीकार हो जाए तो मैं चेंज कर सकता हूँ। हम हंसी हंसी में एक बात कहते हैं, समझो आलस्य है, ये तो पिछले जन्म से आया, चलो पिछला अवगुण है, अभी क्या करे? आलस्य गुण है या अवगुण है? अगर ये वर्तमान पर डिपेंड करता है वो गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है। आलस्य को अगर हम गुस्सा करते समय यूज करें, आज नहीं गुस्सा करते कल करते, तो गुण बन जाएगा। तो वर्तमान एक्चुअल गिफ्ट है हमारी सभी शक्तियों को यूज करके अच्छा पुण्य बनाने का।
वर्तमान बहुत सुंदर गिफ्ट है हमारे लिए, और विशेष रूप से वो ब्रह्मावत्स जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिला है, जिन्हें प्रभु मिलन का एक श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है
जी,
जिनके सामने अपने भविष्य को, लंबे भविष्य को, भविष्य केवल कल परसों दो चार साल का नहीं, अगले पूरे कल्प के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का गोल्डन चांस है
जी,
ऐसी महान आत्माओं को चाहिए कि वो पास्ट में ना रहें। अगर वो पास्ट में रहती हैं, जैसा साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे किया, मोर देन 70% लोग पास्ट में जीते हैं, वर्तमान का ज्यादा सुख ही नहीं उन्हें मिलता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान अपने काम धंधों में जी रहे हैं, केवल धन को सुख मान बैठे हैं, भाई आज अच्छी कमाई हो गई तो घर बहुत खुशी खुशी से लौटेंगे, लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हैं जीवन के, केवल धन ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन महान आत्माओं की जो ब्रह्मावत्स बने हैं, जो प्रभु के आगमन से परिचित हो चुके हैं और जिन्होंने उसका सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने विवेक को डिवाइन कर लिया है। ऐसे भाई बहनों से मैं कहूंगा कि पास्ट में बिल्कुल न जिए, वो बातों में भी न जिए, नहीं तो क्या है, उनकी जो क्रिएटिव एनर्जी है मन की, जिसकी हम चर्चा करते आ रहे थे, अब वो पास्ट की ओर बहने लगी है जहां उसका कोई यूज ही नहीं है
जी।
अभी यूज है उसका वर्तमान में, पास्ट को तो हमें भूलना है, चाहे वो कितना भी कड़वा था, कैसा भी था, नहीं तो क्या है, पास्ट की बातों को याद करके कई मनुष्य इरिटेट रहते हैं
जी,
कई मनुष्य दुखी रहते हैं, तो वर्तमान में भी वो अच्छे काम नहीं कर पाते, उनकी मनोस्थिति वर्तमान में भी उनके लिए सुखदायी नहीं रह पाती। इसलिए हम वर्तमान को एंजॉय करें और वर्तमान को भी इतना सुंदर बना लें कि हमें भविष्य की चिंता ही न रहे। कई लोग भविष्य की चिंताओं में भी जीते हैं, कई माताएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं। लगता तो बड़ा नेचुरल सा है, लेकिन जब देखते हैं कि बच्चे अभी 8-10 साल के ही हैं और माँ बहुत परेशान है, इनका क्या होगा पता नहीं, तो ये थोड़ी सी अबोधतापूर्ण बात नजर आती है। हम वर्तमान को श्रेष्ठ करें, भविष्य स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा।
गीतामन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार हम जैसे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि अपने वर्तमान में जियो, लेकिन अगर जाने अनजाने में मेरे से बचपन में कोई भूल हुई हो या किसी से भूल हुई हो ही जाती है, जीवन है ये, उसका प्रभाव कई बार हमारे मानस पटल पर रहता है। आप बार बार कह रहे हैं, आप तीनों कह रहे हैं कि बीती बातों को भूलते जाओ और तभी आपका वर्तमान और भविष्य अच्छा बनेगा। क्या इतना सहज है जो हमारे साथ कुछ घटना घटी उससे हम पूरी तरह निकल जाए?
सहज है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि निर्माण करने की ताकत आपके खुद के माइंड में है। आप जैसा चाहो वैसा निर्माण कर सकते हो, वो पावर, वो ताकत, वो शक्ति आपके खुद के पास है। आपने पहले भी निर्माण किया है। अगर आप बुरा निर्माण कर सकते हैं तो आप अच्छा निर्माण नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना,
कर सकते।
बस एक दृढ़ शक्ति रखनी है, एक फोकस रखना है कि अब तक मैंने ये देखा, ये सोचा, ये बोला
जी।
अब थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि अब मुझे ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है, ऐसा देखना है। कीचड़ तो है, कीचड़ तो सब देख रहे हैं, पर जिसका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो गया वो कीचड़ में खिले कमल को भी तो देख सकता है
जी, 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 जी।
उसे वो कमल भी तो दिखाई दे सकता है जिसमें बहुत खूबियां हैं। तो हम अपने अंदर ही ये धारणा उत्पन्न करेंगे, बार बार एक ही बात पे फोकस, कि निर्माण करने की ताकत हम सबके पास है
जी।
आप जो चाहे वो निर्माण हो सकता है। और कई लोग क्या होते हैं, जो पूर्व की घटनाएं हैं उन्हें पकड़कर ऐसे बैठ जाते हैं कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते
जी,
जैसे
जी,
जीवन ही स्टॉप हो गया है
और बीमारी का रूप ले लेता है कि भाई उस बात से बाहर ही नहीं निकल पाते,
बाहर ही नहीं। और कई बार तो भगवान को ही कोसते रहते, ब्लेम लगाते रहते एक के बाद दूसरा, या फिर हम इंसानों पे ब्लेम करते रहते, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं ब्लेम कर करके मैंने अपनी हर एनर्जी स्टॉक को ब्लॉक कर दिया है
जी।
तो इसमें क्या हो रहा है, ना भगवान का लॉस हो रहा है, ना इंसानों का लॉस हो रहा है, लॉस मेरा हो रहा है। एक नई सूझबूझ के साथ मैं खड़ी हो जाऊं। जो भाई बहने इस सफर से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में कुछ ज्यादा ही कष्ट है, तकलीफें हैं, दुख हैं, कुछ ऐसे रोग शोक आ गए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, बस एक छोटी सी लो जला दीजिए, आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो सूझबूझ आपको ज्ञान से मिलेगा। थोड़ा ज्ञान से जुड़िए, थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़िए, जो अंधेरे मन में भी प्रकाश पैदा कर देगा, जो इन अंधकारों से तुम्हें बाहर निकाल देगा। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि अंधियारे कितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन एक बात क्यों भूल जाते हो कि जितनी गहरी रात होती है उतना ही सुंदर सूरज चमकता है। जैसे ही भूल की भरपाई होगी, हमारा पुण्य ऐसी सुंदर तरीके से उदय होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
भाई, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है गीतामन की बातें, कि भी कितना भी अंधकार हो लेकिन हमें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, सूर्य का उदय जरूर होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी है, मान लो कोई छोटी घटना या बड़ी घटना, उसका प्रभाव मानस पटल पे इतना रहता है कि वो कैसे इस तरह का विचार लाए कि मैं उससे बाहर निकल जाऊं और मेरे जीवन का एक प्रकाश आ जाएगा।
एक बुरी घटना घटी है, 10 सुंदर घटना भी तो घटी होंगी
जी।
बस यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ सुंदर विचारों का निर्माण अपने चित्त में करें। जैसे दो बातें आ गई हैं जो मैं अपने दर्शकों को पुनः याद दिलाना चाहूंगा। वर्तमान बहुत शक्तिशाली है
जी।
क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस है सब कुछ, हम जागरूक हैं
जी।
हमारे हाथ में बहुत कुछ है, इसका फायदा उठाना चाहिए। पास्ट कमजोर है, फ्यूचर परछाई है। दूसरी चीज के मुझे बचपन में ये बहुत सुंदर, इसको मैं स्लोगन कहता हूँ, मिल गया था और इस विचार ने कई जगह मुझे जीवन में मदद की। जीवन के अंधेरों से क्यों घबराते हो?
जी,
भाग्य का सूर्य तो अंधकार में ही उदय होता है। एक विचार है, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, नो डाउट जब अंधेरा ज्यादा हो जाता है जीवन में, तो आजकल विशेष रूप से, अब से 100 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन आज जब मनुष्य का मन काफी निर्बल है, बहुत निर्बल है, उस टाइम एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, तो मनुष्य थक जाता है
और कमजोर हो जाते हैं,
और कमजोर हो जाता है। जब मनुष्य का मन बहुत स्ट्रांग था, जब उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा था, तब वो किसी की परवाह नहीं करता था। लोग अपना सर्वस्व त्याग कर स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे, पीछे भी महात्मा गांधी के साथ अनेक आंदोलनों में लोग सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें कोई चिंता नहीं थी क्या होगा, कूद पड़े मैदान में। तो लेकिन अब इस परिप्रेक्ष्य में कुछ अंतर आ गया है, इसलिए आपका ये कहना ठीक है कि बार बार जब काले बादल आने लगे तो सहज नहीं होता। कहना सरल है कि अंधेरों से न घबराओ, लेकिन हम उस टाइम कुछ अच्छा अध्ययन करें, और ये अध्ययन के लिए हमें समय रोज ही अपने को देना चाहिए। आज लोग समय दे रहे टीवी देखने पर, मान लो नेट पे, इसमें क्या होता है, दूसरों के विचार हम पर हावी हैं, हमारी क्रिएटिव एनर्जी तो कुछ काम कर ही नहीं रही। हम कुछ अच्छी स्टडी करें, या जो कुछ देखते हैं उससे भी कुछ अच्छा सीख कर उस पर चिंतन करें, ताकि हमारे विचारों में बल आए, और वो बल हमें ये जो निगेटिव चीजें जीवन में आती रहती हैं इनसे बचने में बहुत मदद करेगा।
मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हमें अपने वर्तमान को ध्यान दें, लेकिन कई बार भूत का प्रभाव रहता है। जैसे भाई जी साहब, मैंने प्रश्न पूछा कि मेरे साथ कोई घटना घटी है, मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहता हूँ संदीप भाई आपसे, कि अपन दूसरों को, दूसरे के साथ कुछ होता है तो हमें उसको समझाना सिखाना आसान होता है, मेरे साथ कोई घटना घटी है उससे बाहर निकलना थोड़ा कभी कभी कठिन लगता है।
इसमें बहुत सारी ऐसी केसेस भी आती है साइकोलॉजी में जी। इसमें हम एक दो बातें उनको ये समझाते हैं। सबसे पहली बात यह है, देखो जब परीक्षा होगी तो पास होंगे, पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, परीक्षा नहीं होंगे तो पास नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप 10वीं पास नहीं करेंगे तो 11वीं में नहीं जा सकते ना।
हाँ हाँ,
तो पास करना पड़ेगा। अगर आप पास करते हैं तो गिफ्ट आगे है
जी,
उसका सफलता आगे मिलती जाएगी। इस चीज को अपने आप को स्वीकार करते हुए, जो हो गया उसका जिम्मेवार मैं हूँ।
अच्छा,
इससे क्या होगा, मतलब खुशी का जिम्मेवार भी मैं हूँ, खुशी ला सकता हूँ। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जिम्मेवारी अपने खुद पर नहीं लेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन की एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहली बात स्वीकार कर ले।
ओके,
क्या होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, आधा दुख कम हो जाता है। चलो परीक्षा है, स्वीकार करेंगे तभी तो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। परीक्षा टल जाए इसके पीछे चलेंगे,
ये आज की समस्या है कि मनुष्य जल्दी स्वीकार नहीं करता।
हाँ, लेकिन स्वीकार करने से ही प्रगति होगी। देखो समझो कल परीक्षा है, तो परीक्षा स्वीकार करने से क्या होगा, आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल होंगे। तो स्वीकार करने से बहुत बड़ी तैयारी हो जाती एक चीज, उसके बाद जब एक्सेप्ट करते हैं तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। फिर हमें ऐसी ऐसी बात, देखो हमारे साथ जो घटना घटी है तो हमारे अंदर वो सारी बातें हैं जो घटना से पार ले जा सकते हैं, इसलिए तो हमारे साथ हुई। और हमें अपनी सारी कमजोरी को और गुणों को भी पता है, क्योंकि सब अंदर है। तो जब हम स्वीकार करते हैं तो अंदर से ऐसी शक्ति जागृत होती है जो अच्छे विचारों से या अच्छा पढ़ने से भी और उसको मदद मिल सकती है, हम उस प्रोसेस से बाहर।
मेरी कोई महिमा करे, तारीफ करे, तो वो तो स्वीकार सहज हो जाता है, लेकिन कोई मुझे मेरा बुराई करे या मेरी कोई गलती याद दिलाए तो वो कई बार स्वीकार करना थोड़ा सहज।
मैं ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मेरी बुराई कर रहा है या शिकायत कर रहा है, अगर वो फॉल्ट मेरे अंदर है तो मुझे ईमानदारी से उसे स्वीकार करके ठीक कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो फॉल्ट मेरे अंदर नहीं है तो मुझ पे उस बात का प्रभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सत्यता से ज्यादा उसकी बात पे अधिक विश्वास कर रही हूँ। मुझे अपनी सत्यता पर, अपनी रियलिटी पर फेथ ही नहीं है
जी।
मैं उस झूठी बात पर ज्यादा फेथ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ही कमजोर हूँ। तो इसमें दो ही चीजें आती हैं, मान लीजिए कोई बुराई कर रहा है दाग तो धो लीजिए, ठीक कर लीजिए, नहीं है तो आनंदित रहिए, नो प्रॉब्लम।
लेकिन समस्या यह है गीता बहन, कि अगर मान लो मेरी कुछ गलती हो तो फिर भी चलो स्वीकार कर लो, लेकिन गलती नहीं हो और कोई सामने वाला मेरे को गलत बनाए,
ये तो उसमें ज्यादा अच्छी बात है। मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि मेरी गलती नहीं है, और अगर वो अगला कुछ बोल रहा है तो ठीक है, तुम्हारा सर्टिफिकेट मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि वो चीज मेरे पास नहीं है।
लेकिन एक और चीज मुझे ख्यालों में आ रही है कि मनुष्य को अपनी हार भी स्वीकार कर ले,
नहीं होता ना भाई जी, यही तो बात है, हार स्वीकार।
अब मान लो टीम ही हार गई
जी,
तो स्वीकार करे या ना करे,
हो तो गई,
तो हो गई हार, सबको पता चल गया भाई टीम इनकी इतने रन से इतने विकेट से हार गई है। तो क्या होता है, हार को स्वीकार करने से मनुष्य जीत के बारे में विचार कर सकता है
जी,
चिंतन कर सकता है, और अगर वो मान लो आपस में झगड़ने लगे, इसके कारण हारे, जिसके कारण हारे, इसने गलती की, उसने गलती की, मैंने नहीं की, बाकी सबने की है, तो इससे टीम की यूनिटी भी नष्ट होगी और हम विकास के बारे में या प्रोग्रेस के बारे में, अगली जीत के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति सोचने लगे हमने कहां गलती कर दी, अपनी हार को स्वीकार करते, देखो बहुत लोग उसमें अपनी हार को स्वीकार करते हैं खेलों में, राजनेताओं को भी हम देखते हैं, भले ही वो इलेक्शन में कितने भी संघर्ष करें, जब हार होने लगती है तो बोल देते हैं भाई हमने अपनी हार स्वीकार कर ली
जी, जी।
ये उनकी नम्रता भी है कि युद्ध तो किया भयानक, लेकिन जो कुछ हो गया उसे
जो परिणाम आ गया सामने उसको तो ताला
स्वीकार। तो मनुष्य को अपनी ऐसी मेंटलिटी बनानी ही चाहिए एक सुंदर भविष्य के लिए, कि हम अपनी हार को भी स्वीकार करें, और जैसे गीता बहन ने कहा, अगर हम सत्य हैं तो अपनी सत्यता में ऐसे अचल अडोल रहें कि किसी का दिया हुआ सर्टिफिकेट हमारी अपनी सत्यता से हमें डगमगा न सके।
हमारी चर्चा हो रही है संदीप भाई की वर्तमान के ऊपर, कई बार हमारा ध्यान वर्तमान में नहीं रहता है, ऐसा क्या विचार हम सदैव अपने मन में लाते रहे कि अब वर्तमान हमारा बहुत श्रेष्ठ बनता रहे जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो।
इसके लिए सबसे पहले ये बात है, जिनको सफलता प्राप्त करनी है उनको समस्या को सीढ़ी बनाना सीखना पड़ेगा। जब तक समस्या को सीढ़ी नहीं बनाएंगे सफलता नहीं मिली। आप देखो एक पत्थर होता है ब्लॉक हो गया, दो तीन पत्थर रखो सीढ़ी बन जाती है। जो समस्या को सीढ़ी बनाना सीख जाते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं
जी,
वर्तमान को जीना सीख जाते हैं। और जो वर्तमान को जीना है उसका भविष्य अपने आप बनता है।
कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ बुरी घटनाएं, बुरी बातें, बुरी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि वो बुरी चीजें ही कभी कभी बहुत अच्छी चीजें दे जाती हैं। कि कोई बहुत बीमार था, बेड पर था, एक साल बेड पर रहा, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसके प्रोग्रेस के रास्ते खुल गए, वो इतना तेजी से आगे बढ़ा कि पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और वो अपने एक्सपीरियंस में सुनाता है कि देखो एक साल बेड पर रहा, वो मेरा बेड पीरियड था, लेकिन ये बेड पीरियड मुझे इतना गुड एक्सपीरियंस देकर के गया कि मैं इतनी तेज आगे बढ़ा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो खुद अपने मुंह से ये बातें सुनाते हैं। दूसरी बात, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो सदा के लिए निरोगी बना जाती है। कभी कभी जीवन में कोई हार ऐसी हो जाती है जो सदा के लिए हमें जिता के चली जाती है। कोई कोई असफलता ऐसी आ जाती है जो हमेशा के लिए मुझे सफल बनने के गुर सिखा जाती है। तो कोई ना कोई बुरी बात के पीछे भी अगर हम सूझबूझ से देखें तो कोई ना कोई रहस्य राज जरूर समाया होता है। वो बुरी चीज हटेगी, वो काले बादल हटेंगे तो ही तो सूरज चमकेगा।
बहुत अच्छी बात गीता बहन कह रही हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आ रहे थे, इनके पास उनके 10 आए होंगे। एक व्यक्ति बहुत ढीला चल रहा था और उसके सामने एक बड़ी घटना आ गई, उसका जीवन उस दिन से निखर गया
जी।
एक व्यक्ति थोड़ी सी गरीबी में जी रहा था, उसके घर में चोरी हो गई, हमारे गांव की घटना है। चोरी होने के बाद जैसे लक्ष्मी उस पर मेहरबान हो गई। एक विद्यार्थी एक क्लास में फेल हो गया, मेरे साथ था, बहुत ही डल था, पढ़ाई नहीं जाता था, एकदम बुद्धि काम नहीं करती थी। एक बार फेल क्या हुआ कि सदा के लिए चमक गया और फर्स्ट डिवीजन लाने लगा। ऐसी कितनी घटनाएं मैंने देखी। तो समस्याओं को अपनी सीढ़ियां बना ले, बहुत अच्छी बात संदीप भाई ने भी कहा। और ये चीज ऐसी होती है कि पास्ट के कुछ विकर्म के कारण मान लो कोई बीमारी आ गई, अब वो बीमारी को सहन कर रहा है व्यक्ति, जरा आराम से सहन कर रहा है, बिना चिल्लाए सहन कर रहा है, तो वो पाप कर्म का बोझ उतर रहा है और उसके उतरते ही सुंदर दिन आ गए
जी, जी जी जी।
तो निरोग काया प्राप्त होने लगी। सफलता में, बिजनेस में बाधा आ रही है, लेकिन मनुष्य हिम्मत नहीं हार रहा है, वो उसको आराम से पार करता जा रहा है। चलो थोड़ी कमाई हो रही है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई, एक क्षण आया कि वो विकर्मों का जो दबाव था वो हट गया और बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये बहुत घटनाएं होती है, तो मैं इसको इस तरह देखता हूं। हमने अपने जीवन में देखा, मैंने मन बना लिया था, हम राजनीति में भी देखते हैं, जो महान पुरुष हुए उनके कहानियों से भी देखते हैं, कि जिसकी जितनी निंदा हुई उतना आगे बढ़ गया, पर शर्त एक थी कि निंदा में वो अविचलित रहा हो। अगर निंदा सुनकर उसने अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ लिया तो वो पीछे हट गया।
जी,
तो होता क्या है कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि चारों ओर से एप्रिसिएशन मिलेगी।
जी,
लेकिन दो लोग एप्रिसिएट करते हैं तो चार लोग कुछ ऐसा वैसा बोलते हैं, वो अपनी ईर्ष्या निकालते हैं या अपने अंदर में जो उनके भरा हुआ है उसको निकालते हैं और ऐसा वैसा जहां तहां प्रचार करता है। अब यहाँ दो स्थिति है कि ये व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा काम किया है इसकी खुशी नष्ट हो जाए, और ये उन लोगों के प्रति जो निंदक हैं निगेटिव हो जाए। अभी ये उठते बैठते निगेटिव विचारों में रहता है, मैंने इतना अच्छा काम किया, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, निगेटिव हो गया। दूसरी स्थिति यह है कि दो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, चार लोगों ने इसको डिफेम किया है, और इसको पता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब ये सोचता है किसी की निंदा मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, मैंने आज ये एक अच्छा काम किया, कल दो करूंगा, कल पांच लोग मेरी निंदा करेंगे, अगले दिन मैं तीन करूंगा, कल दस लोग निंदा करेंगे, आखिर सभी लोग निंदा करना छोड़ देंगे, तो उनकी निंदा जिसे मेरे लिए एक उमंग दिलाने का साधन बन गई,
जी
मुझे अपलिफ्टमेंट देने का आधार बन गई, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ है, मैंने भी अपने जीवन में यही अपनाया था और हमारे यहाँ बहुतों ने अपनाई है, कि जो लोग निंदा सुनकर या थोड़े निगेटिव कमेंट सुन के पीछे हट गए वो सदा के लिए पीछे चले गए, और जिन्होंने उन कमेंट्स को स्वीकार ही नहीं किया, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना हमारा काम है, कमेंट्स करना कैसे करते हैं वो उनका काम है,
जी
वो आज आगे बढ़े हुए हैं। पॉलिटिक्स में देख लीजिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें तो प्राय बातें होती है ना, तो हम हमेशा अपने को इस तरह पॉजिटिव रखें, और जो संदीप भाई ने कहा था इन पत्थरों को सीढ़ी बना दें,
जी
हम ऊपर चढ़ते जाएं।
जी 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 जी, मतलब अपने मनोबल को कमजोर ना होने दें और हर घटना को एक प्रकार से ऐसा समझे कि यही मेरे उन्नति के मार्ग का द्वार खोलने वाला है। विशेष रूप से आज हमें जानने और समझने को मिला कि जीवन में लोग बुराई करने वाले भी आएंगे, कुछ निंदा करने वाले भी आएंगे, और कई बार कई कुछ परिस्थितियों के काले बादल भी आएंगे, लेकिन अगर हमारा मनोबल अच्छा है, विचार अच्छे हैं, सकारात्मक संकल्प है, तो इन सब परिस्थितियों से सहज पार हो सकते हैं। और जैसे आप तीनों ने बताया कि एक सूर्य का उदय जब होता है तो उसके पहले अंधकार जरूर रहता है, तो अंधकार से घबराना नहीं है, अपने जीवन को सफर को सुहाना बना के रखना है। आप तीनों अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए सुंदर सुंदर विचार लाए, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इस जीवन रूपी यात्रा में बातें तो आएगी, परिस्थितियां भी आएगी, कैसे भी विकराल काले बादल भी आएंगे, कभी कभी हमें विकट परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने मनोबल को कम नहीं होने देना है, अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाना है। कई बार हम देखते हैं कि कठोर धरती पर भी सुंदर बीज उगता है, ऐसे ही अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से घिर गए हैं जहां से आपको निकलना मुश्किल हो रहा हो, तो अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प का बीज बोएं, और वो बीज आपके भाग्य का निर्माण कर सकता है। छोटी छोटी घटनाओं से घबराएं नहीं, ये घटनाएं ही हमें भविष्य में बहुत कुछ सिखाएगी। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि कुछ छोटी बातें जब वो पार हो जाती है तो सुंदर एक भाग्य का उदय होता है। तो इस सफर में इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन में सदैव खुशहाली को साथ रखें, श्रेष्ठ संकल्प को साथ रखें, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। नमस्कार।
Thank you.